نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سيرت ابراهيمي اور اس کے تقاضے ہم اس میں سے پانچ تقاضے دیکھ چکے جو توحید رسالہ کتابوں پہ ایمان فرشتوں پہ ایمان اور آخرت پر ایمان سے گزرا آج ہم جس چیز پہ بات کریں گے وہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ توحید وہ تو ہم کافی حد تک جان چکے انہوں نے جو کلمہ شہادت پڑھا تھا لا الہ الا اللہ کی جو گواہی دی تھی اس کا کیا تقاضا ہے اور حقیقت یہ کہ ہم سب دنیا میں آنے سے پہلے بھی جو عہد کرتے ہیں وہ اور جو دنیا میں آنے کے بعد ہمارے کان میں ایک اذان دلوا کر جو عہد کروایا جاتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا عہد ہے اور ہر عہد میں ذمہ داری ہے آپ جو ذمہ داری لیتے ہیں اس میں جواب دہی ہوتی ہے آپ کو کسی کے گھر کی چابی گاڑی کی چابی سیل فون پکڑا دیا جائے تو کیا ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے کہ شروع ہوتی ہے جان پہ بن جاتی ہے ذمہ داریوں کا احساس تو بندے کو سونے نہیں دیتا تو جب کلمہ پڑھا جاتا ہے تو وہ ایسی نہیں ہوتا جیسے بے خبری میں کوئی نکاح کے دو بول پڑھ دے اور اس کے بعد کہ میں تو ایسے ہی پڑھے تھے کوئی کہے چلو جاؤ اب تمہیں اس گھر چھوڑ کر آتے ہو کہتی میں کیوں جاؤں آپ کہتے ہیں یہ آپ کا شوہر ہے آپ نے اس کو خوش کرنا ہے اس کی اللہ کی رضا کے لیے بات ماننی ہے وہ کہتی میں تو نہیں کرتی بھائی تم نے تو دو بول پڑھے اچھا دو بولوں کا یہ مطلب تھا وہ تو میں سمجھی کہ اس لیے بڑے تھے کہ مجھے شادی کا خوبصورت جوڑا ملے اچھا ہماری بچیوں کے ہاں شادی کا موسٹلی تصور کیا ہے اچھے کپڑے اچھے کھانے آج کی بچی نہیں یعنی ہر معاشرے کی یہاں اس سے مراد یہاں کی بچیاں نہیں بلکہ پاکستان اور انڈیا میں مجھے نہیں پتا کیا حالات ہیں لیکن اوور آل دیکھا جائے تو پوری دنیا میں اس وقت شادی کلچر جو ہے کون ہے جو ان کو شادی سے پہلے شادی کے لیکچر سنواتا ہے اور ان کو اچھی بیوی بننا سکھاتا ہے یا بیٹوں کو اچھا شوہر بننا سکھاتا ہے ہمارے لیے تو شادی ایک فن اور اچھے کپڑے پہننے کا ذریعہ ہی بنتی گئی لیکن یہ ذمہ داری ہے سب جانتے ہیں ایک ان میرڈ بچی کی زندگی اور ایک شادی شدہ زندگی کتنا فرق ہے برا نہیں ہوتا لیکن فرق تو ہوتا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھنا اور لا الہ الا اللہ نہ پڑھنا یہ دو مختلف سٹیٹس ہیں جیسے وہ کبھی فارمز میں لکھا ہوتا ہے نا آپ کا میریٹل سٹیٹس کیا ہے میرڈ ان میرڈ ڈیورسڈ سنگل ہے نا لکھے جب آپ نے میں نے کلمہ پڑھا یا جس کے کان میں کلمہ بچپن سے پڑھتا گیا اس کا سٹیٹس ذمہ دارانہ سٹیٹس ہو جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام توحید کے اس نور پہ تھے جس کو نور فطرہ کہتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ لیکن گھر کا ماحول سازگار نہیں تھا پیچھے سنتے آ رہے ہیں بار بار جو نیا لیکچر کوئی سن رہا ہے آج کا ہی صرف باقی نہیں سنے تو ان کو باقی بھی لیکچر سننے کو مل جائیں گے تو وہ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا ماحول اچھا نہیں تھا آپ میں اس کو اپنی زبان میں ایسے سمجھتے ہیں کیونکہ عورتیں ہیں تو عورتوں والی باتیں سمجھ آتی ہیں ہمیں شادی ہو گئی ایسے سسرال میں جن سے ذہن نہیں ملتا کیا زندگی ہوگی کیا جیرن زندگی نماز روزے کا پتہ ہی نہیں شرک بدعت حلال حرام یہ تو ٹرمز ہی نہیں ہیں ذرا دیکھیے ایسی عورتیں اور ایسی لڑکیاں روز جیتی ہیں روز مرتی ہیں بڑے خوش بخت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی شادیاں بڑے موافق گھرانوں میں ہو جائیں ابراہیم علیہ السلام ایک بچے تھے لیکن اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا اپنے لفظوں میں کہہ لیں کہ اچھے گھر میں نہیں پیدا ہوئے اللہ کے حکم سے تھا اس پہ آپ کو اعتراض نہیں کر سکتے نہ میں کر سکتی ہوں اللہ نے ہر ایک کو مختلف بنایا یاد رکھیے دنیا مختلف ہے سب ایک جیسے ہو جائیں گے تو دنیا کیسے چلے گی دنیا کے معاملات نہیں چل پاتے تو بہرحال باپ بھی بت پرست تھا اور بت فروش بھی تھا اور بتوں کا پجاری تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس ماحول میں بھی اپنی وہ چمک دمک نہیں چھوڑی ذرا سا ایک مثال لیجیے اللہ نے دل میں ڈال دی آپ اصلی زیور پہنتے ہیں گولڈ جس کو کہتے ہیں اور ایک نقلی ہوتا ہے دونوں کا ذرا فرق لکھیے اپنے نوٹس میں ایک کالم بنا لے ریئل جیولری ریئل گولڈ اور دوسرا امیٹیشن دونوں میں پہلا بڑا فرق جو ہم سب کو بغیر کہے بھی پتہ ہے کہ گولڈ کی جیولری مہنگی ہوگی اور امیٹیشن سستی ہوگی لکھ لیں नंबर दो ये है कि सोना लेकर उसकी हिफाजत की बहुत फिक्र होगी। आर्टिफिशियल लीव ये कोई नहीं, कहीं पड़ा भी रह गया वॉशरूम में, अगर वुजू करते हुए एक रिंग पड़ी भी रह गई तो इट्स ओके, हिफाजत कम होती है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि इस्तेमाल करते हैं जब ज़्यादा, तो गोल्ड को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ख़वातीन ने चूड़ियाँ पहनी होती हैं, कभी रिंग पहनी होती है, वो बाद में ब्रश मारेंगी तो साफ़ सुथरी हो जाएगी। इसके बरक्स इमिटेशन ज्वेलरी, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो, और जितनी महंगी होगी उतनी हसास होगी, क्योंकि वो जो महंगी ज्वेलरीज ख़रीदते हैं वो बर्तन नहीं धोते, वो बस कहीं पार्टी में जाकर पहनते हैं और उतार देते हैं। तो कसरत इस्तेमाल से सोने की चीज़ ज़्यादा नुकसान नहीं उसको होगा, बल्कि और निखरेगी। इसके बरक दूसरी तरफ आप सब जानते हैं, पानी होगा ऊपर उतर जाएगा, गोल्ड प्लेटेड ही क्यों ना पानी उतर जाता है। अब इसको लाइए, जिस तरह सोने का और नकली जेवर का फ़र्क होता है ना, इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों के या इस कलमे की गवाही देने वालों की भी दो किस्में होती हैं। कुछ रियल कलमा पढ़ते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे, अबू बकर सिद्दीक जैसे, सहाबा जैसे, ताबईन जैसे, और कुछ ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। फ़र्क कहाँ पता चलता है? जहाँ इस्तेमाल होता है बंदा। जिस तरह असली नकली सोने के जेवर का पता इस्तेमाल के वक्त चलता है, शोकेस में पड़े हुए दोनों एक जैसे लगते हैं। आज तो आपको होता है कि रियल गोल्ड जैसी लुक लाइक गोल्ड, जिसको कहते हैं इमिटेशन, वो सोने से ज़रा थोड़ी ही सस्ती होती है चीज़, लेकिन वो सोने से भी खूबसूरत लगती है। कभी कभी पता ही नहीं चलता, खुली आँख से आप जैसे मेरे जैसों को तो पता ही ना लगे। शादियों में लोग जेवर वो बनाकर असली रख देते हैं लॉकरों में, और नकली पहना के दुल्हन को लेकर जाते हैं कि चोर ना आ जाए रास्ते में। मुझे किसने बताया, मुझे आज तक नहीं बात भूलती, कि रियल गोल्ड का सेट बनाया वो कितने, 16 लाख का कितने का बना होगा, और उसी का सेम 1 लाख रुपया दे के सेम डिज़ाइन उसी ज्वेलर से कहा आप नकली भी बना दो। भाई क्यों? कहने लगे वो बारात जानी है, रात को आएंगे, ये होगा, तो देंगे असली कि हाँ हाँ हम असली दे रहे हैं, लेकिन पहनाएंगे नकली। तो मैंने कहा दुनिया में इससे भी बड़ा धोखे का व्यापार है, आप बनाई नकली दें, बड़े जेवर बनाई नकली दें, पहना दें, जहाँ भी पहनेगी फिर आप साथ गनमैन लेके जाएंगे, लेकिन आप देख लीजिए। तो असली नकली कलमे का फ़र्क होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम असली मोमिन थे, उनका कलमा सोने जैसा था, आर्टिफिशियल नहीं था। इसलिए बुरे से बुरे माहौल की तपश ने, जिसको आप कह सकते हैं रफ एंड टफ माहौल ने, उनके ईमान की चमक को कम नहीं किया। अपनी कौम से खिताब करते हैं, कौम ने ना माना, क्या हुआ सुनिए, आयतें लिखेंगे। सूरत शोरा 75-77 तक। قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون, आपने फरमाया कुछ खबर भी है जिनको तुम, अंतुम व आबाउकुम अलअक़दमून, और तुम्हारे बाप दादा पूछते हो, यानी तुम और तुम्हारे बाप दादा जिनको पूछते हो, फ़इन्नहुम अदुवुल्ली, वो सब मेरे दुश्मन हैं, इल्ला रब्बल आलमीन, सिवाय रब्बुल आलमीन के जो तमाम जहानों का रब है। कितना यकीन था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने कलमे पे, ला इलाहा इल्लल्लाह पे। बल्कि आप सूरत मुमताहिना तक जाते हैं ना, तो वहाँ कुछ और तफसील भी है। आपने आगे बढ़कर अपने सारे ऐसे ख़ानदान और बिरादरी के लोगों से जो शरीक करते थे अल्लाह के साथ, जो मुशरिक थे, अदावत और नफ़रत और बेजारगी का इज़हार कर दिया, बायकॉट कर दिया आज की ज़बान में। आज हम गलत चीज़ों को कभी नहीं छोड़ पाते, क्योंकि अपनी फैमिली, अपना ख़ानदान, लेकिन मुशरिकीन से घुल मिल कर उनके तौर तरीक़ों को अपनाना बंदे के अपने ईमान को भी ख़तरे में डाल देता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, बरमला इजहार कर दिया, और सिर्फ एक अल्लाह के वाहिद होने का, अल्लाह के एक होने का प्रचार कर दिया। और सबसे बड़ी बात, एक जुमला लिख लें कि आपस में दोस्ती और मोहब्बत का मेयार तौहीद बारी ताला, इसको लिख लें। आयत लीजिए, सूरत अल मुमताहिना आयत नंबर 4। قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة. हमें ये जुमला बोलने में 20 साल लग जाते हैं, कहते नहीं, खानदान है, बिरादरी है, ससुराल है। पहले अपने ससुरालों से डरते हैं, फिर बच्चों के ससुरालों से डरने लग जाते हैं। इमेजिन कीजिए कितना वाज़े दो टोक जुमला है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कि इन्ना बुराओ मिनकुम व मिम्मा ताबुदूना मिन दूनिल्लाह कफरना बिकुम। सबर ही नहीं है, यानी तसल्ली नहीं हो रही कि अब और ही कह दें, और अल्लाह ताला आपको मुझे कहता है कि तुम्हारे लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों में बेहतरीन नमूना है। जब उन्होंने अपनी कौम से बरमला कहा कि हम तुमसे और जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो उनसे बेजार हैं, बरी हैं, बाइकॉट, और हम तुम्हारे मुनकर हैं जब तक तुम अल्लाह की वाहदानियत पर ईमान न लाओ, इस वक्त तक हम में और तुम में हमेशा के लिए बुग़्ज़ और अदावत जाहिर हो गई है। तो ये है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो तर्ज़े अमल जो हक़ तौहीद अदा कर देता है। हम बोन मुस्लिम हैं, हम ये जुमला नहीं बोल सकते, हम जाके एक उम्रा और कराएंगे, हर साल हज पे जाने के लिए हम रोएंगे, बकरा एक नहीं 6 कुर्बानियां कर देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी वही करेगा जिसके लिए अल्लाह आसान करे। लेकिन हम इस तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे निभाने में दो टोक नहीं होते, और ख़ास तौर पे जब मुकाबले पे खानदान हो, बिरादरी हो, रस्म व रिवाज हो। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह का सही मफहूम सुझा दिया, इसीलिए फिर उनके इस अमल को कलिमतुम बाकियतुन कहा। हम कहते हैं ये तो रिश्ते तोड़ने वाली बात है, खानदान टूट जाएगा, फूट पड़ जाएगी, पुआड़ा पड़ जाएगा। अल्लाह कहता है कलिमतुम बाकिया। मुझे जो समझ आया ना थोड़ा बहुत पढ़ने और पढ़ाने से, वो यही समझ आया कि अल्लाह को हमसे मतलूब ही है। नमाज रोज़ा तो उसकी प्रैक्टिस है कि कभी नमाज में खड़े और कोई बच्चा पीछे आ गया, मेहमान आ गया, तो हिलना नहीं, नमाज पढ़ रहे हो। रोज़ा रख के ये सिखा दिया कि हराम सामने आएगा तो तुमने इनकार करना है। हमें जो सबक सिखाया जाता है उसका आखिरी जिसका लुब्बे लुबाब है वो ये है कि एक तरफ सारा मुआशरा गलत चीज़ की तरफ रग़बत देने वाला, या उनमें से कोई एक आपका प्यारा, और जब आपका कोई प्यारा ये दावत दे तो मुश्किल से और मुश्किल है, और दूसरी तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नहीं हमसे होता, हम एक नहीं 4 दफ़ा कुरान पूरा पढ़ लेते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, हमसे मदद कर रहे होते हैं, हमसे ये नहीं होता। तो लिखे ला की तलवार से जब तक सारे इलाहों का सर कलम ना कर दें, इल्लल्लाह समझ नहीं आता। हमारी आधी जिंदगी तो सिर्फ ला इला पे जाती है, इल्लल्लाह का मौका आता है तो हमारे गोडे गिट्टे रह चुके होते हैं, फिर हम बिस्तरों पे पड़े होते हैं। ईमान जो है ना वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप ऊपर से लिपा पोती कर दें और आप कह देते हैं कि जी कलमा पढ़ देंगे, अच्छा जी ये रस्म करते हैं, ये फलां मुसलमान हो गया। ईमान बड़ी खूबसूरत चीज़ है। आप किसी ज़मीन में पौधे के लगने से ईमान को शुरू करेंगे और वो फल बनने तक अगर आपको ना मिले तो बात ना बने। तो ईमान की दुरुस्तगी सबसे पहले मतलूब है, फिर नमाज रोज़ा हज ज़कात। कुछ लोगों के लिए अल्लाह पर ईमान लाना बस एक थ्योरेटिकल बात है, वो कैसे पढ़ते हैं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे करते, वो क्या करते। किसी का सवाल था मेरे पास, किसी के जनाजे के बारे में परेशान है, पढ़ना है नहीं पढ़ना, एक बार पढ़ना है दो बार पढ़ना है, क्या करें वो करें। अल्लाह के बंदो तुम इतने जमा तफरीकों में पढ़ते हो, ये बताओ फजर जोहर असर भी पढ़ी कि नहीं जिस दिन जनाजे की नमाज पढ़नी थी। ईद आती है हर साल, झगड़े नहीं पढ़ते कई मुल्कों में, आज चांद दिखा कि नहीं दिखा, ईद की नमाज पढ़े ना पढ़े, भाई नफिल नमाज है तो फजर पढ़ी थी आपने। यानी हमारा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। तो कुछ लोगों के लिए लिखिए ये चंद जुमले आपको फायदा देंगे, कुछ लोगों के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना एक थ्योरेटिकल पेपर है, जैसे आपकी असाइनमेंट्स होती हैं, आपके पेपर्स होते हैं ना, तो आप थ्योरेटिकली उसमें पास हो जाते हैं। मोस्टली पेपर हमारा जो फर्स्ट हाफ होता है वो 25 नंबर का होता है ना, 12 के टेस्टों का, कुछ के 25 में से 25 आ जाते हैं। इसी तरह असाइनमेंट होती है एक पारे की पूरी, 100 में से 100 भी आ जाएंगे, लेकिन जब अमली पेपर आते हैं तो उसमें हम हार जाते हैं। शोहर से मामला बिगड़ा, ससुराल से बिगड़ा, बहन भाइयों से बिगड़ा, वहाँ हम भिदक चुके होते हैं। तो कुछ के लिए तो अल्लाह से बात करना एक अमल का नुक्ता नहीं बल्कि किताबी बातें, और कुछ के लिए अल्लाह से मुलाकात की तैयारी है ये। ये वो मोहब्बत है जिसके अंदर बंदा इतना महव होता है, सारी ज़िंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए वो तैयारी कर रहा होता है जिस दिन अल्लाह से मुलाकात होनी है, वो दिन कैसा होगा। और अल्लाह के नबी सिखा के अल्लाह मेरी ज़िंदगी का वो दिन सबसे खूबसूरत दिन बनाना जिस दिन तेरे से मेरी मुलाकात हो। जैसे दुल्हन को शादी के दिन सर से पांव तक सजा देते हैं ना कि ये अपने शौहर से मिलेगी, वो उसको देखेगा, ये खुश होगी, वो खुश होगा। आप जिससे जितना प्यार करते हैं ना, आप उसके लिए ज़्यादा उतना सज के जाते हैं, तैयारी करके जाते हैं, और जहाँ खुशी नहीं होती आप कहते हैं छोड़ो मैं क्यों अपने आप को बोझिल करूँ। तो अल्लाह सुबहाना तआला से मुलाकात की तैयारी है ला इलाहा इल्लल्लाह। जिन्होंने तैयारी की होती है ना दुनिया में, वो तो हर बात पे उछलते कूदते आ जाते हैं, पहले से तैयार थे, टोकरियां भी तैयार, बैग्स भी तैयार। और जिन्होंने तैयारी नहीं की होती, उनके सामने जब ला इलाहा इल्लल्लाह का कोई तकाजा आता है ना, तो वो फरार जाते हैं, नहीं हमसे तो नहीं होता, आजकल तो नहीं होता, अब तो नहीं होता, सुबह में नहीं होता, शाम में नहीं होता, रात में नहीं होता। और हकीकत यह है कि अल्लाह की ज़ात की हमें समझ नहीं आती, अल्लाह की ज़ात कैसी है वो नहीं समझ आती। लैसा कमिस्लिही शैयुन, लेकिन उसकी सिफात की समझ आती है, क्योंकि उसकी बहुत सारी सिफात उसने हमारे अंदर रखी हुई है। और अल्लाह की ज़ात हमसे कुर्बानी चाहती है, हर मोहब्बत कुर्बानी चाहती है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना असल में खुद को कुर्बान करना होता है। अल्लाह ताला ने हमारी मोहब्बतों के दावों की दलील मांगी हमसे। और अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा सच्चा है ना, तो लोगों की नाराज़गी का क्या डर। हमारे मोहब्बत के दावे के बाद मोहब्बत के लेवल्स चेक किए जाते हैं, जैसे पेपर्स चेक करते हैं, स्टूडेंट पेपर दे के आ जाता है, तो फिर जो एग्ज़ामिनर है वो एक एक सवाल को देखता है कौन सा जवाब ठीक है कौन सा गलत है। अल्लाह सुबहाना ताला भी आपके मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। और हमारे दिलों में जितनी अल्लाह की कदर होती है ना, एक होती कीमत, एक होती वैल्यू। किसी ने कहा कि आप चीज़ें महंगी हो गई, लिखिए ये जुमला, अब चीज़ें महंगी हो गई, यानी हमारे घरों में महंगी चीज़ें आने लग गई, लेकिन उनकी वैल्यू ख़त्म हो गई। कभी ईद का एक जोड़ा मिलता था, क्या खुशी होती थी, और आज हर दिन ईद है, आप एक दिन में दो नए जोड़े पहन ले, आपको कौन रोकता है। हदीस है क़यामत के करीब तुम सुबह शाम कपड़े बदलोगे। तो आज ये नाइट वेयर, ये मॉर्निंग वेयर, ये पार्टी वेयर, ये कैजुअल वेयर, ये हमारे स्लीपिंग वेयर्स, और ये शादी वेयर, ये ज़रा हल्के जोड़े, ये भारी जोड़े, ये वेडिंग जोड़े, ये 6-7 तो मैंने भी गिना दिए आपको, इससे भी ज़्यादा होंगे। ये मेहंदी का जोड़ा, ये वलीमे का जोड़ा, ये उपटन का जोड़ा, जितनी चीज़ ज़्यादा हुई उतनी डिवैल्यू हो गई। आज हमारे घर इतनी ग्रोसरी आती है, हमारे बच्चे को कोई खुशी नहीं है जूस का डब्बा देखकर। आपको खुद भी याद होगा, मुझे तो याद है, घर में जब मेहमान आता था तो उसके लिए एक बोतल आती थी, एक बोतल 100 रुपए की होती थी शायद, हमने वो नहीं देखी, लेकिन हमारी नानी कहती थी बंटे वाली बोतल। ऊपर बंटा आता था तो टिक करते थे ना, तो वो नीचे चला जाता था तो पानी पीते थे। हम छोटे थे तो जब जाते थे ननिहाल में, तो बाहर एक आवाज आती थी, नानी अम्मा बंटे वाली बोतल आ गई, जो लाइक चवन्नी चवन्नी, उसमें ढक्कन क्या थे, वो कॉक नहीं होते थे तब, तो टिक करना ना तो आवाज आनी, तो वो बंटा से अंदर चला जाना, तो हमने बोतल पीनी। अब क्या, वो वापस जाती थी बोतलें, फिर वो बिकती थी या वापस जाती थी या अगले दिन ले जाता था, क्या करता होगा जाके उसको धुला के ना, फिर वो उसमें दोबारा बोतल भरते थे, तो वो कोई प्रेशर जब पड़ता है ना, तो वो बंटा फिर ऊपर फंस जाता था। एक बोतल छोटी 100 रुपए की आती थी, 7 अप ही होती थी, पता नहीं कोक भी होती होगी, मुझे अपनी होश में याद है ये लीटर वाली बोतल जब पहली दफा आई, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी बच्चों को ही थी, क्या वो एक मेहमान के लिए खुलेगी तो हमें भी मिलेगी। आज जाकर आप सब अपने घर के वो क्लॉजेट्स और फ्रिज और फ्रीजरों के इर्द गिर्द जो बोतलें, ड्रिंक्स और जूसेस रखे, उनके डब्बे गिन के आए, और ईद के लिए जो तैयारियां की होंगी वो तो अल्लाह की बना, हमारी जगह ही नहीं रहती, हमारे घर में इतना सामान आता है। आज चीज़ें ज़्यादा हो गई, महंगी चीज़ अब महंगी है, लेकिन वैल्यू कोई नहीं रही। आपके फ्रिज में 3-4 किस्म की आइसक्रीम तो रहेगी, 5-6 किस्म की सब्जी, 7-8 किस्म का गोश्त। चलिए बकरीद आ रही है ना, आपके फ्रिज में गोश्त खत्म हो गया वो एक हफ्ता से, हमने अपनी होश में देखा है कि 10 ज़िलहज है ना कुर्बानी का दिन, तो कम से कम शुरू के 10 दिन घर में गोश्त नहीं आता था। आज दाल, आज सब्जी, आज कढ़ी, आज खिचड़ी, क्यों भला? ईद पे गोश्त खाएंगे। और वो जो ईद के पहला खाना दोपहर को आप बकरे का वो पका हुआ बगैर कुछ डाले, वो जो एक बस समझे कि चढ़ा के गोश्त को, जो उसका टेस्ट था आज भी आता। और आज ईद की दावत में लोग गोश्त पहले से लेके आते हैं। आप कहेंगे हम यहाँ कुर्बानी नहीं करते, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही, कुर्बानियाँ करने वालों का भी गोश्त, वो कहते ईद का गोश्त खाते नहीं बच्चे, ये गलता नहीं है, ये गलता बहुत है, ये इसकी ये है, स्मेल आती है। हम बदल गए, मान लीजिए हमारे दिलों में अल्लाह की जितनी कदर होती है ना, हम उसके लिए उतना ही शौक से निकलते हैं, उसके लिए शौक से देते हैं, शौक से पहनते हैं। हमें अपने लिए कॉर्नर लगता है कि हमें अल्लाह के लिए निकलना पड़ता है, वरना तो बाकी चीज़ें इधर उधर हैं, बाकी सब बुत हैं। वो कहते हैं ना कि रिश्ता है पेबंद बुताने वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने इब्राहिम के कलमे की गवाही कैसे ली, आपसे मुझसे कैसे लेता है? 5 नमाजें रख दी, फजर पढ़ते हो कि नहीं? चलो गोट फरिश्तों जाओ चेक लगा दो कलमा ठीक पढ़ा इसने, जोर में भी ज़रा जाके, और दिन में 5 चेक करवा लो ठीक है, चलो साल में एक दफ़ा रोज़ों का भी हुक्म दे दो फ़र्ज़, और ये कुछ नफिल भी और ज़कात और जो 4-6 चीज़ें लगवा दी जाती हैं। हमारी छोटी छोटी असेसमेंट्स हैं अल्लाह के यहाँ। इब्राहिम के कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही अल्लाह ने बेटे की गर्दन पे छुरी रखवा के ली थी, यानी फिर अल्लाह तो फिर अल्लाह है ना। अल्लाह ने भी जब खलील को चुना तो उसकी औलाद पे हाथ रख कर देखा कि पता चले कि बेटा ज्यादा प्यारा है या मैं प्यारा हूं, तो ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे ये हैं कि हर रिश्ता छोटा अल्लाह का रिश्ता बड़ा। ईमान बिल्ला व ईमान बिर रिसाला का खुलासा यह है कि एक हदीस है अल्लाह के नबी की कि तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी हर चीज़ से प्यारा ना हो जाऊँ। तो फ़ैन कुन तुम तो हिब्बुन अल्लाह फ़त्तबिउनी, मोहब्बत ईमान का जुज़ है, बाकी सब वहमो गुमां के बुत हैं। बतौरे खालिक अल्लाह सबसे बड़ा, और बतौरे मखलूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि आसमान पे एक ही बड़ा, सबसे बड़ा अकबर, अल्लाह अकबर। आजकल तकबीरात आम कीजिए, घरों में, गाड़ियों में, आपके घर गूंजे, हमें पता ही नहीं है कि घरों में ये चीज़ें भी लगाने की हैं। सब आवाज़ें दब के सारा वक्त अल्लाह अकबर होता रहे, ताकि हमारा भी दिल माने कि सबसे बड़ी हस्ती वो है। और ज़मीन पे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अगर आप वाकई अब्दुल्ला हैं, आप इब्राहिम हैं, तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी बताएंगे। देखिए जो ला इलाहा इल्लल्लाह ने, इसके दो जुमले लिख लें बस, गायते हुब और गायते जुल, मोहब्बत की गायत। यानी जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं ना, तो आप सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जो कुरान में भी आता है वल्लज़ीना आमनू शद्दु हुब्बल्लाह। और दूसरा है गायते जुल, आजजी, हम्बल, ह्यूमिलिएटेड, यानी मोहब्बत महबूब के आगे घुटने टिकवा देती है, झुका देती है। बस आपको कोई कहे फला अमेरिका का सदर है, आप कहते ठीक है, ये आपको इल्म है, पर आप उस पर ईमान तो नहीं लाते ना, जाके कोई प्लेच तो नहीं करते। इसीलिए अगर हमें पता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ जी हमें खबर है वो एक इलाह जिसके सिवा कोई अल्लाह नहीं है, तो ये इल्म है। इल्म से आगे बढ़कर ईमान की जरूरत है। और अगर ज़कात को टैक्स समझते हैं तो बात नहीं बनती। और इन सब के पीछे अना, मैं, तकब्बुर, इबलीस का यही इशू था, उसको ये बातें समझ नहीं आई थी। तो यहां इस कलमे को समझते हुए दिल से मान लीजिए कि सारे झूठे माबूदों का इनकार सिर्फ जुबान की नोक से काफी नहीं है, बल्कि दिल से तस्दीक भी जरूरी है। और सिर्फ दिली तस्दीक اور زبانی اقرار سے ہی عقیدہ توحید کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ سب معبودان باطلہ کی ڈٹ کر تردید کرنا ضروری ہے۔ پھر اس پر بھی بس نہیں ہے، بلکہ لوگوں میں محبت کا معیار ہی عقیدہ توحید ہونا چاہیے۔ تین چیزیں آپ نے بھی تو کلمے کے تقاضوں میں پڑھی ہیں نا، کئی کورسز میں بتائی ہیں الحمدللہ آپ میں سے جنہوں نے کیے ہیں، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، وعمل بالجوارح۔ تو ایمان پورا نہیں ہوتا، کلمہ پورا نہیں ہوتا جب تک عمل بالجوارح نہ ہو۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اپنے کلمے کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے اس سیرت کو پڑھنے کے بعد۔ اگر آپ کو مجھے ابراہیم کا پڑھ کر بھی نہیں پتا چلا نا کہ ذات برادری، خاندان، بچے چھوٹے بڑے یا اللہ بڑا، تو پھر ایک بار پھر پڑھانے کو میں تو تیار ہوں، جتنا مرضی پڑھ لیجئے۔ توحید والا اللہ سے محبت اور پیار میں اتنا نڈر ہوتا ہے جیسے ایک لڑکا لڑکی سے محبت میں نڈر ہو جاتا، کہتا ہے کرنی ہے شادی تو ادھر ہی کرنی ہے، سارے خاندان کے آگے بول پڑتا ہے، وہ ابا کی عزت، وہ دادا کا شوق، وہ ماں کا خواب، کوئی نانی نے رشتہ بندھا، کہتا ہے میری بلا سے مجھے اسی لڑکی سے پیار ہے۔ اور وہ لڑکی کیا ہے؟ کوئی سونے کا کنگرا ہی ہوگی، دیتی کیا اس کو؟ اور جس رب نے اتنا کچھ دیا، جب اس سے پیار ہو تو بندہ بے لاگ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے پھر جرت ملتی ہے۔ لا الہ الا اللہ پورا ٹھیک ہو جائے نا تو بندہ بڑا جرت مند ہوتا ہے، حضرت عمر کی طرح، اور ابو بکر اور عثمان غنی اور علی رضی اللہ عنہ کی طرح، پھر ساری دنیا ایک طرف لیکن عداوت اور بیزاری، اور ایسا مباحث کہ جس کے سامنے ساری دنیا ہیچ ہے۔ ابراہیم وہ معیار قائم کر گئے جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور ہے بڑا مشکل، اس میں جذبات کی قربانی ہے، ایک روپیہ نہیں دینا پڑتا۔ ہم 25-25-30-30 ہزار کا بکرا خرید لیتے ہیں، ایک جذبہ نہیں قربان کرتے اللہ کے لیے، ایک خواہش نہیں قربان کرتے، اور جب کہ پیسہ بھی ہو پاس اور کرنے کے اسباب بھی ہوں۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث لکھ لیجئے، آپ کو فائدہ ہوگا، ابو مالک الاشجعی سے روایت ہے، اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انہ قال من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، اللہ اکبر، حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اللہ کے ماں سوا جس چیز کی بھی عبادت کی جاتی ہو اس کا انکار کرے، تو اس کی جان اور مال محفوظ ہو گیا اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ تو ہم سب مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، توحید کے متوالے تو ہم بندے ہیں، مگر مشرکین سے نفرت نہیں کرتے شرک کی وجہ سے۔ یاد رکھیے لفظ مشرک نہیں، قابل نفرت، نفرت وہ شرک ہے جو وہ کرتا ہے۔ فَإِخْفَانُكُمْ فِي الدِّينِ، جب وہی زبان کلمہ پڑھ لیتی ہیں تو تمہارے بھائی ہیں، سورۃ توبہ میں یہ مضمون ہے۔ اور ہم شرک کا رد نہیں کرتے، شادی بیاہ غیر مسلموں جیسے، سارے رسم و رواج مشرکین جیسے، ایسے دو رنگے مسلمان، ٹائی اینڈ ڈائی کپڑے کی طرح، ٹو ٹون کپڑے کی طرح، ٹو ٹون زیور کی طرح، وہ کلمہ طیبہ کا اقرار بھی کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی ان کا ایک جملہ ہوتا ہے جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو۔ یہ سنہرے لفظ بول کر اپنے خاندان بچا لیتے ہیں، سسرال کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں، کیا یہ پھر کلمے کا تقاضا پورا ہو رہا ہے، توحید کا ہو رہا ہے، یا پھر ایمان کی کمزوری کا ایک اظہار ہے، اس کو سوچیں گے۔ اور اگلے نقطے پہ ساتھ ہی چلی، اسی سے نکلتا ہے وہ، جب آپ کو لا الہ الا اللہ کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے اور وہ مجھے 9 نشانیاں اور شروط یاد آ رہی ہیں جو میرے گمان میں آپ سب کو تو یاد ہو جانی چاہیے۔ اب تک DQ20 میں بھی اس کا ذکر ہوا، 21 میں بھی ہوا، الگ سے شروط لا الہ پہ شاید 3 سیشنز بھی ہمارے ہو چکے ہیں۔ اور جب بھی میں نے کسی سے پوچھا ہے کہ کلمے کی شرائط کون سی ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، کتنی ہیں نہیں پتہ، کیا ہیں نہیں پتہ۔ اور جدی پشتی مسلمان ہیں ہم، ماں بھی مسلمان، باپ بھی، دادا بھی مسلمان، نانا بھی، پر دادا بھی مسلمان، پر نانا بھی، اور اس سے اوپر کا بھی آپ حساب لگا لیں، हमें नहीं पता आज आपके 2.5 बिलियन मुसलमानों में से शायद चंद सौ या चंद हजार को पता होगा कि कलमाए तैयबा पढ़ने के बाद शर्तें क्या है, कंडीशनल है। आप इस मुल्क में रहते हैं, ये गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, लेकिन कंडीशनल है। आप कानून तोड़ें, आप इनके टैक्स ना दें, आप इनके साथ झूठ बोलें, फिर देखिए ये आपके साथ करते क्या है। तो लिखिए अगला तकाजा, नंबर 7 पे आ गए, अल्लाह से मोहब्बत सबसे बढ़कर होनी चाहिए। असल में कलमा मोहब्बत लव स्टोरी है। जब अल्लाह की बात आती है ना, तो बस बात लंबी होने लग जाती है, लेकिन इसके अलावा कोई और बात भी नहीं है करने की, ये भी बता दूं।